ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विभिन्न आयामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार शुभाजीत राय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा में हैं और आज उन्होंने आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट अटेंड करे हैं। एम्बेसडर तायल, भारत ने इस साल जनवरी के महीने में आसियान के लीडर्स को यहां पे बुलाया था और एक कमेमोरेटिव समिट होल्ड किया था। अब 10 महीने बाद जब प्रधानमंत्री दोबारा से मिल रहे हैं आसियान लीडर्स के साथ, भारत और आसियान के बीच में जो संबंध है उसके बारे में क्या संदेश देती है?
आसियान 10 देशों का एक ग्रुप है। वो भारत के लिए, भारत के विकास के लिए और सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 90 के दशक से हमने जो लुक ईस्ट पॉलिसी अख्तियार की थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आने के बाद उसमें एक नई दिशा, नई एनर्जी प्रदान की है और इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा है। अभी वो जून में भी सिंगापुर गए थे, वहां उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शांघाई डायलॉग में कीनोट एड्रेस दिया था। तो किस तरह पूरा आसियान आगे बढ़े और भारत भी विकास की दिशा में साथ साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये कितना मुख्य है। बार बार समिट कर, जैसे जनवरी में समिट हुआ था और 26 जनवरी का जो परेड हुई थी उसमें 10 आसियान देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, वो सब चीफ गेस्ट थे। तो ये हमारे विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी और हम आगे बढ़ रहे हैं।
इस समिट में और पहले भी जब आसियान देशों के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, उस समय इंडो पैसिफिक के बारे में काफी चर्चा हुई है। भारत कहता है कि इंडो पैसिफिक पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ ओवरफ्लाइट भी होना चाहिए और उसके साथ साथ यूएन के लॉज के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। इस संदर्भ में चीन का हमने बर्ताव देखा है पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में भारत और आसियान कैसे एक दूसरे के साथ मिल बैठ के इस समस्या का हल निकाल सकते हैं?
इंडो पैसिफिक पूरा क्षेत्र अभी तक काफी शांतिपूर्ण था और कोई यहां पे किसी तरह का टेंशन नहीं था, पर पिछले 2-3 वर्ष में, 5 वर्ष में जिस तरह चीन ने वहां की यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न किया है और जो पहले बिल्कुल रॉक्स थी वहां पे बड़े बड़े आइलैंड बना दिए और अब उनको पहले कहा था मिलिटराइज नहीं करेंगे, अब मिलिटराइज कर दिया है। वहां पे एयर बेसिस बना दिए हैं अपने, उन्होंने हवाई जहाज खड़े कर दिए हैं। तो सब देशों को ये एक डर है कि वो अपना प्रभुत्व पूरे साउथ चाइना सी पर कायम करना चाहता है और वहां पे जिस तरह से देशों की जो शिपिंग होती है, नौसेना वगैरह के जहाज जाते हैं, उनको वो रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जो किसी भी देश को स्वीकार नहीं है। और उन्होंने जो वियतनाम और कुछ और देशों के जो बड़े वैलिड क्लेम्स हैं उनके अपने टेरिटोरियल, उसको भी चाइना ने क्रश किया है। इन सबको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि सारे आसियान के देश और जो मुख्य देश हैं जैसे भारत है, जापान है, यूएस, वो सब चाइना के साथ मिल बैठकर बात करें और उनको समझाने का प्रयत्न करें कि चीन जो भी करे वो किसी लॉ के हिसाब से करे। एक लॉ ऑफ द सीज है इंटरनेशनली जो उसकी दुनिया में एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसको चाइना ने भी साइन किया हुआ है, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार अगर वो काम करे तो वो सब देशों के लिए अच्छा होगा। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा आज के जो भी डिस्कशन आसियान में हुए सुबह और दोपहर के बाद ईस्ट एशिया समिट में हुए।
एक मुद्दा और है भारत के साथ जो आसियान लीडर्स की बातचीत चल रही है कुछ सालों से, वो है रीजनल कॉमन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप के नाम से हम जानते हैं। वो ट्रेड डील एक है जिसका नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो वो इतना लंबा खिंचा हुआ है। इस बार भी कोशिश हो रही थी, सुरेश प्रभु जी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वो गए थे 2-3 दिन पहले और जाके नेगोशिएशंस में भाग लिया, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। क्या समस्या है, आरसेप अभी तक कंक्लूड क्यों नहीं हो पाया है?
ये भारत के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है। भारत चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स देशों के साथ हो, आरसेप भी हो, पर पिछले कुछ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, हमारा कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, सिंगापुर के साथ है, उसमें जो हमारा अनुभव है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। हमने ये देखा कि हमारा देश में हमने अपना बाजार तो खोल दिया, तो बाहर की चीजों ने हमारे देश में वो आए और हमारी इंडस्ट्री कम होती जा रही है, पर हमारी इंडस्ट्री कुछ इसका लाभ उठा नहीं पाई या जो भी वजह हो, हमारे एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था और ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। हमें ये डर है कि अगर आरसेप हो गया तो तो चीन को एक मौका मिल जाएगा कि भारत में अपनी निर्यात को और बढ़ा सके। अभी भी अगर आप भारत के बाजारों में जाएं तो आधी चीजें चीन की बनी हुई मिलती हैं। अगर ड्यूटी भी कम हो गई तब तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने कहा और उसके बाद जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा कि जो देश हैं वो अलग अलग उनकी सर्कमस्टेंसेज हैं, अलग अलग सिचुएशन हैं और डेवलपमेंट में वो कहां पर हैं वो भी अलग अलग है। तो उन सबको देखते हुए जो समझौता आरसेप होना चाहिए, भारत उसमें चाहता है वहां पर रहे, पूरा कमिटेड है, पर सब देशों के लिए एक ही फ्रेमवर्क शायद नहीं हो पाएगा। देख सिंगापुर की तो $50,000 पर कैपिटा इनकम है, हमारी शायद $2,000 या $2,500 पर कैपिटा इनकम है, चीन कहीं बीच में है। तो सबका एक साथ विकास हो और जो भी जिसकी अपनी पिक्यूलरिटीज हैं उनको एकोमोडेट किया जाए, इस तरह का आरसेप बने, उस दिशा में प्रयत्न चल रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने एक और मीटिंग करी वहां पे जो कि अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ, उसमें आतंकवाद का मुद्दा काफी प्रोमिनेंटली उठाया गया, तो उसमें और क्या बातचीत हुई?
उपराष्ट्रपति माइक पेंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी सलाहकार हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें दो मुद्दे मुझे लगता है कि उभर के आए। एक तो पूरा जो आतंकवाद का मुद्दा है, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में उनसे कहा कि अगर देखें तो टेररिज्म के जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब घूम फिर के एक देश की ओर ही इंगित करती हैं, और उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। और ये अब अमेरिका भी समझ गया है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने और कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो अब राजनीति में खुलेआम आने की कोशिश कर रहे हैं, और
इशारा हाफिज सईद
की तरफ था जिसने इलेक्शन भी लड़ा, और ये पाकिस्तान के लिए और विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। एक डायरेक्शन तो वो रही। दूसरा, उपराष्ट्रपति पेंस साहब ने यह भी जिक्र किया कि फ्री एंड ओपन एक्सेस टू सीज, उनका इशारा साउथ चाइना सी की तरफ था कि जिस तरह चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पूरे दक्षिण चाइना सी पर, और जिस तरह से उसकी नेवी बढ़ रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक उनका बन गया है, दो तीन और बन रहे हैं, उसका कुछ दूरगामी उद्देश्य ये है कि किसी तरह भारतीय महासागर और साउथ चाइना सी सबको वो डोमिनेट करे और वहां से किसी तरह अमेरिका को डिस्प्लेस करे। वो अच्छा नहीं है और मैं समझता हूं इसमें भारत और अमेरिका साथ साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। भारतीय महासागर इस समय बिल्कुल शांतिपूर्ण है, वही स्थिति आगे भी रहे।
भारत का तकरीबन आधी ट्रेड इंडो पैसिफिक और उस रीजन से गुजरता
है।
इसी संदर्भ में एक ग्रुपिंग है क्वाड्रिलैटरल के नाम से जाना जाता है, जो चार देश भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के आला अफसर बैठ करके बातचीत करते हैं और फोकस उन लोगों का इंडो पैसिफिक होता है। तो इसमें चारों मिलकर के क्या चीन को मुकाबला करने के लिए ये ग्रुपिंग माना जाए, या एक ब्रॉडर एजेंडा और विजन है इंडो पैसिफिक के प्रति वो माना जाए?
एक ब्रॉडर विजन है इंडो पैसिफिक का। एक तो ये चारों देश लोकतांत्रिक हैं, जनतांत्रिक हैं, तो इनसे बात करने में एक आइडियोलॉजिकल समानता है। दूसरा, इंडो पैसिफिक शांतिपूर्ण रहे तो इस तरह का एक वहां पे खाका बने, एक आर्किटेक्चर बने कि जो ओपन हो, खुला हुआ हो, इंक्लूसिव हो, सब देश समान रूप से पार्टिसिपेट करें, ट्रांसपेरेंट हो कि कोई भी काम कोई भी देश करे वो खुलेआम करे, ये नहीं कि कहते कुछ है करते कुछ है। और जिस तरह चाइना ने आइलैंड बना के उनको मिलिटराइज किया और दुनिया को एक तरह से धोखा दिया, तो ये क्वाड इस तरह का एक प्रयत्न है कि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसका जो नया रूप सामने आए वो शांतिपूर्ण हो और सब देश साथ मिलकर काम करें। और इसमें आगे काफी जाना होगा। मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा सा चीन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो बहुत बड़ा देश तो है पर दूसरे देश अगर मिलेंगे तो उसको मनमानी नहीं करने देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अंदाजा
त्याग। धन्यवाद।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विभिन्न आयामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और पत्रकार शुभाजीत राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।